Ladies and gentlemen, good day and welcome to Dharmaj Crop Care's Q4 and FY23 earnings conference call. As a reminder, all participant lines will be in the listen-only mode, and there will be an opportunity for you to ask questions after the presentation concludes. Should you need assistance during the conference call, please signal an operator by pressing star then zero on your touchtone phone. Please note that this conference is being recorded. I now hand the conference over to Mr. Sayam Pokharna from TIL Advisors Private Limited. Thank you, and over to you, Mr. Pokharna.
Thanks a lot, Tanvi. Good afternoon, everyone, and a very warm welcome to each and every one of you. Thanks for joining the maiden earnings conference call of Dharmaj Crop Care Limited. The investor updates, presentation, press release has already been submitted to the stock exchange. In case anyone does not have a copy, please feel free to reach out to me. To take us through today's results, we have with us from the management team, Mr. Ramesh Talabhia, Chairman and Managing Director, Mr. Jaman Talabhia, Whole-time Director, Mr. Vishal Domadia, Chief Executive Officer, and Mr. Vinay Joshi, Chief Financial Officer. Since it is our first call, we will be starting with a brief overview of the company, followed by the remarks on financial performance for the quarter and for the whole financial year. I would like to remind you all that anything and everything said on this call that represents any outlook for the future, which can be construed as a forward-looking statement, must be viewed in conjunction with the risks and uncertainties that we face. These risks and uncertainties have been mentioned in detail in our prospectus. Now, I would like to hand over the call to Mr. Ramesh. Over to you, sir.
Thank you, Mr. Sayam. Good afternoon and warm welcome to the Q4 and FY23 earnings conference call for Dharmaj Crop Care Limited. We appreciate your presence on this call and look forward to discussing our company's performance for the past financial years. As this is our maiden earnings conference call, we would like to take this opportunity to provide a comprehensive overview of our company, its journey, business verticals, and future outlook. Journey and overview. As many of you would already know, Dharmaj Crop Care Limited is a relatively new player in agrochemical industry. Having been incorporated in 2015 by first-generation promoters with extensive experience in various agrochemical companies, including the like of Coromandel, Sumitomo, Caminova, UPL, etc. We began commercialized operations in 2016 with our formulations marketing, formulation manufacturing unit in Kerala JDC on the periphery of Ahmedabad in Gujarat. At the time, we began marketing formulations under two sub-verticals, B2C via our own distribution network and B2B institutional verticals. Over the last 7 years, we have built a distributions of 13,500+ touchpoint, 4,500+ dealer and distributors in 20 states, supported by 16 stock depots. While on the institutional side, we have built a customer base on 730+ clients, wherein we are actively engaged with small formulators. Our split between B2B and B2C has remain at approximately 70-30 ratio over the last 7 years. And this fiscal year, we achieved a top line 534 crores, which has grown at a CAGR of 40% over the past 5 years, only from the formulation business. IPO and object of IPO. Coming back to 2022, and more recently, our listing, ever since our incorporations, our company was focused on eventually being an integrated agrochemical company with its own active ingredient operation. And this we believe is essential to build scale and resilience business models. To that effect, last year in December 22, the company went public with an IPO of 251 crores, out of which 216 crore was fresh issue of the equity share. The core object of our IPO was to partially finance the upcoming plant at Saykha, which will be manufacturing technicals and intermediates. This will be around 200 crore project expected to go live in Q3 FY24. And with the potentials of generating 3x asset turn at full utilization. Moreover, part of production out of this unit will be used captively for our formulation business vertical, while rest will be third-party sales. Thus, this will help us establish cost competitiveness in our existing business and improve the blended EBITDA margins of the company. Strategy going forward. Moving forward, our strategy will be pursue growth in all three fronts. Branded formulation with our newly added 6 state in 22 while strengthening the position in the existing market. Institutional formulations where we will become more cost competitive post backward integration. Further, we plan to meaningfully engage in export, which is currently only 10% out of the top line. Active ingredient, the first goal is to commission the plant in Q3 FY24, which is on track as we have commenced machinery installations in the intermediate block. When we reflect on our company's history and track record, one can see that Dharmaj has outpaced industry growth in last 7 years of our commercial operations. As we move forward, we aim to maintain this growth path by doubling our top line every 3 years. Moreover, we anticipate that the additions of active ingredients to our operations will enable us to increase our EBITDA margin as we achieve optimum capacity utilization. Q4 and FY23 financial highlights. As many of you may be aware, the agrochemical industry is going through a serious slump in the last couple of quarters in both domestic and export market. Several factors have contributed to this, including global supply chain, destocking, rapid and continuous fall in both inputs and output price, all of which have contributed to mute business in FY23. Coming more specifically to the company, on an average, we have to witness 25% reduction in price realization in the last 5 months, which is true across the industry. Thus, despite volume growth in H2 FY23 compared to the corresponding period in previous year, we witnessed lower sales. Movement is expected to pick up with the upcoming seasons. However, so far in April, things have been relatively slow. We have hopeful to better offtake with the onset of the new season as the buying of upcoming seasons kick in. All in all, FY23 ended on a good note for us. Despite all the industry headwinds, we reported 536 crores in top line, registering at 35% growth over the previous year. EBITDA margin witnessed some compressions from 11% in FY22 to 9% in FY23, which is mainly on account of higher institutional sale, whereas margin are some less, business expansion activity like advertising, sales promotion expenditure, coupled with significantly higher on-ground marketing team, 186 to 109 last year. Going forward, we will reap benefit to this investment and margins will normalize as sales from the new market kicks in. PAT from year stood at 33 crores, registering at growth 15% over the previous year. As we enter the new financial year, we look forward to growth on all fronts, that is our existing branded business, institutional formulation business, which commercializes our upcoming active ingredient business also.
Sanvi, we can start with the question and answers, please.
Sure. We will now begin the question and answer session. Anyone who wishes to ask a question may press star and one on their touchtone telephone. If you wish to remove yourself from the question queue, you may press star and two. Participants are requested to use handsets while asking a question. Ladies and gentlemen, we will wait for a moment while the question queue assembles. The first question is from the line of Vanil Desai from Turtle Capital. Please go ahead.
Hi, team. Good morning. So my first question is, we have done very well, on the B2C side. But if I look at your product portfolio, that is largely very mature products like Fipronil, Cortifos, 2,4-D, Lipotec. So there are many large players which are already present and have captured this market. So can you talk a bit about how we have been able to grow in such mature products? Well, typically the growth rate of this product is not very high.
Hello. Yeah. ये अपना जो product portfolio है अभी existing portfolio, उसमें every year हम नया-नया products, molecules जो market की need है, वो identify करके हम add करते जाते हैं. Only हम generic पे depend नहीं है. आपने अपना portfolio देखा होगा, उसमें काफी जो new molecules है, और combinations products है, जैसे Fipro plus Imida है, Thia plus Lambda है, और Z-Shift technology है, CS technology है, वो सब नया-नया product हम add करते जाते हैं, और एवरी ईयर इसमें इंप्रूवमेंट करते जाते हैं. ऐसा नहीं है कि दो वो जो ओल्ड मॉडल ओल्ड जेनेरिक प्रोडक्ट है वही कंटिन्यू करते हैं. अदरवाइज वो मार्केट के शेयर के हिसाब से जो भी नया प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट रहती है तो वो आइडेंटिफाई करके हम एवरी ईयर इंट्रोड्यूस करते हैं. जैसे हमने लास्ट ईयर 3 प्रोडक्ट ऐसा इंट्रोड्यूस किया कि जो मार्केट से अलग हटके हम उसके ऊपर काम करें. और सम प्रोडक्ट हम न्यूट्रिशन बेस्ड प्रोडक्ट है, जैसे जिंक प्लस सल्फर का एक प्रोडक्ट हमने जिका सल्फर ऐड किया. तो ये नया नया इनोवेटिव मार्केटिंग हम करते रहते.
अच्छा सर, तो सर आप ये बता पाएंगे कि हमारा जो B2C वाला पोर्टफोलियो है वहाँ पे लेट्स से कि टॉप 5 या टॉप 10 प्रोडक्ट कितना कंट्रीब्यूट करती है, इसका कुछ सेंस दे पाएंगे?
हेलो.
हाँ सर बताइए.
हाँ विशाल.
हाँ सर. सर 17% है. हेलो.
हाँ जी बताए.
17% है वो टॉप 15 प्रोडक्ट जो है हमारा कंट्रीब्यूट करती है उसमें.
अच्छा अच्छा ओके. तो मतलब आपका प्रेटी ब्रॉड बेस्ड है जो भी चीजें देखता है.
उसमें सर देखेंगे तो हमारा डिपेंडेंसी कोई सिंगल प्रोडक्ट पे या तो कोई सिंगल प्रोडक्ट ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा हो ऐसा नहीं है. दूसरा चीज जो आपने बताया कि जेनेरिक पोर्टफोलियो है जैसे ग्लाइफोसेट 2,4-D, तो उसमें हमारा स्ट्रेटेजी यही रहता है. जनरली हम लोग उसमें वॉल्यूम गेन करते हैं और कुछ मार्केट के हटके प्रोडक्ट है जो जिसमें कंट्रीब्यूशन रियलाइजेशन अच्छा होता है उसको हम लोग डिमांड जनरेशन एक्टिविटी थ्रू प्रमोट करते हैं और मार्जिन हमारा एवरेज होता है.
और सर अपना जो ग्रॉस मार्जिन है वो इट इज अराउंड 20% के आसपास रहता है. बट मतलब सम ऑफ द अदर जो फॉर्मुलेटर्स जो B2C में है जैसे रैलिस ऑफकोर्स उनका स्केल बहुत अलग है बट उनके ग्रॉस मार्जिन तो काफी अच्छे रहते हैं. तो हमारा एक स्ट्रेटेजी है कि हम मतलब ज्यादा वॉल्यूम बट अच्छे कम ग्रॉस मार्जिन पे काम करके वी वॉन्ट टू गेन मार्केट शेयर, वो हमारा स्ट्रेटेजी है.
सर हमारा अभी कॉम्बिनेशन देखे ना तो फॉर्मुलेशन के साथ साथ हमारा B2B बिजनेस भी है, उसके लिए ग्रोथ मार्जिन आप देखोगे तो कम है दोनों का कंबाइंड. अगर सिंपल आप B2C का देखेंगे तो इंडस्ट्री के पैरेलल है अबाउट 30%.
ओके. और एक और क्वेश्चन सर कि हम ये जो नया कैपेक्स कर रहे हैं टाइका में तो सर हमारे मतलब हम जनरल अंडरस्टैंडिंग ये है कि टेक्निकल साइड पे एक्टिव इंग्रेडिएंट मैन्युफैक्चरिंग इज फार मोर कॉम्प्लेक्स इन टर्म्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन प्रोसेसेस मैन्युफैक्चरिंग सेटअप. तो सिंस हमारे पास फॉर्मुलेशन का एक्सपीरियंस है बट टेक्निकल का नहीं है तो उस वो उसके रैंप अप में या उसके स्टेबिलाइजेशन में डिले ना हो उस रिस्क को हम कैसे काउंटर करते हैं और आपके हिसाब से Q3 में ये प्लांट कमर्शलाइज होने के बाद कितना टाइम लगेगा टू स्टेबिलाइज एंड देन लेट्स से ऑप्टिमल कैपेसिटी 60-70% पहुंचने में क्या टाइम फ्रेम हम सोचते हैं?
तो ये जो नया एक्टिव इंग्रेडिएंट के लिए ऑलरेडी हमने जो प्रोडक्शन एंड R&D टीम एक्वायर कर दिया है तो वो उसका काम कर रहा है। हमारा R&D सेंटर भी अभी जून में एक्टिवेट हो जाएगा। और रहा प्लान ये है कि हमने जो प्लान किया है कि Q3 FY24 में ये प्लांट पूरा एस्टेब्लिशमेंट हो जाएगा और लास्ट क्वार्टर में हम उसको सम सेल्स में कन्वर्ट करके अपना कमर्शलाइज कर सकते हैं। मतलब हमारा जो कैपेसिटी है उसका 10-15% हमारा Q4 में हम उसको कैच कर लेंगे।
ओके ओके। और सर 60-70% तक पहुंचने में क्या दो साल इज व्हाट यू आर?
दो साल लगे। दो साल।
अच्छा ओके।
तीन साल में हम जो ऑप्टिमम लेवल है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का वहां तक पहुंचेंगे।
ओके। और सर ये टेक्निकल साइड पे टिपिकली 35-37% ग्रॉस मार्जिन रहता है तो आर वी ऑल्सो थिंकिंग कि उस नंबर के आसपास हमारे ग्रॉस मार्जिन रहेंगे? ओके ओके ठीक है सर। मेरे को और क्वेश्चन है बट आई विल कम बैक।
ओके थैंक यू।
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द लाइन ऑफ आशफ पटेल फ्रॉम मॉलिक्यूल वेंचर्स। प्लीज गो अहेड।
सर थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। सर ये समझना था ब्रॉडली कि Q3 एंड Q4 ये फाइनेंशियल ईयर में काफी फ्लैटिश रहे एंड इनफैक्ट डीग्रोथ देखा है हमने। सो कैन यू प्लीज गिव सम मोर कलर ऑन द करंट डिमांड सिचुएशन, अभी कैसा डिमांड है? बिकॉज मार्जिन पे भी काफी इम्पैक्ट रहा है लास्ट दो क्वार्टर में, तो गोइंग फॉरवर्ड न्यू सीजन में आप एक्सपेक्ट करते हो कि ये सारी चीजें नॉर्मलाइज हो जाएगी या अभी और कपल ऑफ क्वार्टर्स के लिए ये पेन रह सकता है?
उसमें ऐसा है Q3 एंड Q4 में जो स्लो डाउन रहा उसका मेन रीजन ये है कि जो रबी सीजन है ना वो थोड़ा डाउन रहा और जो वो डाउन रहा मतलब डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनली बहुत, तो एक्सपोर्ट भी उतना नहीं हो पाया। आप एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री का आप अदर पीयर्स का भी देखोगे तो पूरा इंडस्ट्री का ही हाल रहा। तो ये टेम्पररी है, उसका ऐसा नहीं है कि वो परमानेंट। अब अपना Q1 में वो नॉर्मलाइज हो रहा है, मतलब अप्रैल मई जून तक वो पूरा जैसे नॉर्मल इंडस्ट्री होगा तो उसी बेस पे फिर ऑन वे में आ जाएगा। तो ये नेक्स्ट ईयर अच्छा ही रहेगा ऐसा उम्मीद करते हैं।
ओके सो वो वेरी नेक्स्ट क्वार्टर मतलब Q1 से ही चेंज वापस दिखना चाहिए, नॉर्मल एसी पे आना चाहिए चीजें।
Q1 में थोड़ा स्लो रहेगा लेकिन Q2 पिक रहता है तो Q2 फिर नॉर्मलाइज हो जाएगा Q2 से।
ओके और सर अभी करंट सिचुएशन
प्राइस का जो डाउनफॉल रहा है वो तो Q1 में उसका इफेक्ट रहेगा और Q2 तक भी असर उसका इफेक्ट रह सकता है।
ओके
वॉल्यूम जो है वो मैच हो जाएगा एज पर इंडस्ट्री।
पर सर डिमांड विजिबिलिटी तो आपको डोमेस्टिक मार्केट में कैसी लग रही है कंपेयर टू एक्सपोर्ट मार्केट?
एज पर लास्ट ईयर जो है Q1 Q2 का वो एज रूटीन में नॉर्मलाइज हो रहा है।
ओके और सर कमिंग टू द इंस्टीट्यूशनल फॉर्मेशन सेगमेंट, सो सर हम पायरेथ्रॉइड्स बेचते हैं B2B में फॉर्मुलेशन में और कितना प्रपोजिशन होता है वो सेल्स का B2B सेल्स का?
फॉर्मुलेशन जो हमारा अभी एज ऑन डेट जो मार्केट है उसमें 25-30% ये सिंथेटिक पायरेथ्रॉइड का फॉर्मुलेशन रहता है।
ओके और सर गोइंग फॉरवर्ड आपका क्या प्लान है विद इन B2B फॉर्मुलेशन सेगमेंट, डोमेस्टिक में ज्यादा एफर्ट्स रहेंगे या एक्सपोर्ट में ज्यादा रहेंगे?
ये जो हम सिंथेटिक पायरेथ्रॉइड का जो ला रहे हैं एक्टिव इंग्रेडिएंट्स वाला तो हमारा दोनों जगह पे फोकस है। हमने एक स्ट्रेटेजी ऐसा बनाया है कि पैन इंडिया में हमारा B2B प्रेजेंस होना चाहिए ईच एंड एवरी फॉर्मुलेटर। जैसे ऑल ओवर इंडिया में हमने एक सर्वे करवाया तो मोर देन 1500 स्मॉल फॉर्मुलेटर है, 1500 स्मॉल फॉर्मुलेटर है। तो हमारा टारगेट है कि ईच एंड एवरी वन हम टच करें। तो कोई भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है तो उसको हम छोड़ना नहीं चाहते। और दूसरा जो कॉर्पोरेट लेवल का प्लेयर है वहां भी हमने अभी लास्ट ईयर से टचिंग करना चालू किया। तो मोस्टली जो बिग कॉर्पोरेट है जैसे कोरोमंडल है, UPL है, हेमानी, हरम्बा, भारत, उन लोगों से भी हमारा बिजनेस स्टार्टअप हो गया, इवन रैलीज नागार्जुना, तो ये भी करंट ईयर में हमको अच्छा बेनिफिट रहेगा उसका, और उसके साथ रिलेशन बाउंड होगा तो हम बार्टनिंग भी कर सकते हैं। जैसे हमारा सिंथेटिक पैराथ्रोड आ रहा है, तो अभी हमारा कोरोमंडल के साथ डिस्कशन चल रहा है कि भी ये सिंथेटिक पैराथ्रोड हम आपके देंगे, आपका टेक्निकल हम ले रहे हैं, तो उस तरीके से बार्टनिंग भी चल रहा था दलित के साथ, कोरोमंडल के साथ, इस तरीके से।
अच्छा, फिर अगर आप छोटे प्लेयर्स को टारगेट कर रहे हो वो समझ में आता है, बट यू ट्राई टू कैप्चर बिगर प्लेयर्स, तो वहां पे तो प्राइसिंग प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं होता है बिगर कॉर्पोरेट्स में?
पर ये बैटनिंग कर सकते हैं ना, वो जो टेक्निकल है वो हम उससे परचेज कर ही रहे, तो उसके सामने हम उसको दे रहे, तो जो प्राइसिंग प्रेशर तो वो दूसरे से परचेज कर रहे हैं तो हमसे लेंगे, मार्केट है तो मार्केट के रियलाइजेशन पे तो चलना ही पड़ेगा।
बट अगर आप मिक्स चेंज करते हो, एग्रेसिवली ट्राई करते हो B2B में फॉर्मुलेशन में ग्रो करने का, और इवन देन एग्जिस्टिंग मार्जिन्स जो है, अगर आप बड़े प्लेयर्स को भी टारगेट कर रहे हो तो भी एग्जिस्टिंग मार्जिन्स तो फिनटेक रहेंगे ना?
नहीं, एग्जिस्टिंग मार्जिन जो है, मतलब सपोज आज कोई भी एक कंपनी, आप गर्डा ले लो, कुछ हाइपरमेथिन बनाता है, तो हम भी इन हाउस में हाइपरमेथिन बनाएंगे तो दोनों का कॉस्ट वाइज कोई फर्क नहीं रहेगा ना, मार्जिन तो जो सब कंपनी ले रही है उसी हिसाब से हमारा मार्जिन मेंटेन होगा।
ओके,
तो मार्केट के हिसाब से चलना पड़ता है, ये कोई अपना 100% मोनोपोलराइज प्रोडक्ट तो है नहीं, अगर दो कंपनी बेच रहे तो हमें उसी रेट में उसके आसपास ही रेट करना होगा जो कॉर्पोरेट लेवल में है, और जो छोटे लेवल के बी कैटेगरी का जो प्लेयर है, जो फॉर्मुलेटर है, वहाँ अपना मार्जिन वाइज हम अच्छा मेंटेन कर सकते हैं, तो इसलिए हमने टू वे सिस्टम रखा है, तो एवरेज आउट अपना एबिटा मार्जिन ब्लेंडेड सही हो जाए।
ओके, और सर ये ब्रांडेड फॉर्मुलेशन वाले सेगमेंट में अगर पूछे तो हिस्टोरिकली आपने एवरी ईयर अराउंड 2 states टारगेट किए हैं, बट लास्ट ईयर 6 states टारगेट हुए थे, सो ये चेंज इन स्ट्रेटेजी क्यों है, और आपको ग्रोथ कैसा दिख रहा है विद इन द ब्रांडेड फॉर्मुलेशन सेगमेंट?
ब्रांडेड फॉर्मुलेशन में हम लोगों ने लास्ट ईयर 6 states ओपन किए और आगे भी हम लोग पान इंडिया एक्सपांशन करने जा रहे हैं। उसका एक वजह है, हम लोग आगे अगर कोई कंपनी से टाइप करना है तो हमारे पास कस्टमर बेस, हम लोगों को मोनोपोली मॉलिक्यूल यहाँ इंडियन मार्केट में लॉन्च करना है, कोई R&D बेस्ड कंपनी है उसके साथ टाइप करके, तो हमारे पास कस्टमर बेस होना चाहिए, तो इसीलिए हम लोग एग्रेसिवली उसमें जा रहे हैं।
ओके,
सॉरी टू इंटरप्ट मिस्टर पटेल, यस मैनेजमेंट मेंबर्स प्लीज प्रोसीड। Okay, Mr. Patel, I would request you to please come back in the queue.
Sure.
The next question is from the line of Himanshu Binani from Prabhudas Lilladher. Please go ahead.
Thank you. Thank you, sir, for taking my question. So, sir, my first question was largely pertaining to the gross margin side. So, what we have seen in the domestic agrochemical companies, whichever companies has reported their numbers till date, as well as the global companies, everyone has actually witnessed some sort of like contraction into the gross margin, and there has been an immense pricing pressure in India as well as in the global market. However, we have seen a 500 basis point sort of gross margin expansion. So, what would be the reason basically for this? Despite we being into the generic side of the portfolio?
So you are asking about the Q4 margins. Yeah. See, so looking at the market conditions, we have changed our strategy and we have focused on the high margin products, and we sold high margin products in Q4, which really helps very well to increase the margin in this Q4 compared to earlier quarters.
So, sir, going forward, how should actually one look at the gross margin profile going forward?
Going forward, we'll maintain the margin as per industry level and what we are doing. And as we are seeing that there was a pricing pressure on the sales, and so we focus mainly on the high margin products, both in B2C and B2B. And we managed to get this margin because their sales volumes were less. And so that was strategically we focused on the high margin products. And that paid well during this downward trend.
So the margin range would be in somewhere in the range of?
20-21% we'll maintain.
21%. Okay. And sir, now the second question was again in connection with the first question only. So what we have seen is that if we bifurcate the revenues, so our domestic formulation, which is somewhere around 30%, while the balance 70% is from the institution business and the export business.
Correct, sir.
Now, if I actually look into the EBITDA margin profile, so EBITDA margin has dragged, and that was largely led by, despite a 500 basis point expansion in the gross margin, the higher other expenses, and that was largely led by the increased advertisement and promotional expenses, which has actually led to a drag in the EBITDA margins. तो सर ये एक चीज समझना था मेरे को डोमेस्टिक बी टू सी में इज वेयर वी आर स्पेंडिंग ऑन द एएनपी साइड इंस्टीट्यूशन में सर बहुत ज्यादा मतलब करते हैं क्या सर तो द एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशन
इंस्टीट्यूशनल वी आर स्पेंडिंग मच ऑन द सेल्स प्रमोशन एक्टिविटी आवर मेजर फोकस इज ऑन द बी टू सी बिजनेस वेयर कंपेरेटिव टू लास्ट ईयर And earlier quarters, we have aggressively spent on this B2C segment, and we are hoping that this is going to give benefits in coming quarter of this upcoming season. As we also mentioned that now we have expanded our network in 6 additional states, so those are the pretty new states for us, and that's why we focus on promotional activity in all those states, and that majorly happens in this Q4. And we are going to see an impact on this in coming quarters.
So going forward, how do one look into the split between the domestic B2C and the institution and the export business? Kya ratio rehna chahiye, sir, in the next 2 years?
The ratio will, of course, the B2C ratio will improve. What is currently it is around 30%, but we are hoping that it will improve gradually and it will go up to 32-35%. In coming years, and once we go to mature, once we go to maturity level, it may further increase us because of all this promotional activities going on.
Because sir, yehi bas ek jo disconnect tha basically in the numbers, that was this ki the branded formulation which used to be somewhere around 31% in FY22, which has came down to 27%. So, despite a lower contribution in the branded formulation, we have increased the A&P spends and the labor force. So, going forward, sir, phir ye number substantially improve hona chahiye, logically, because in the last 4 year CAGR number which we have given, 30% ke kareeb growth is segment se aa raha hai, while the other two segments, which is the domestic institutional and the export institutional, which is increasing upwards of 40% CAGR. So, jo already grow kar rahe hain, which segments, so how should actually matlab one look into this? Kya focus rahega?
We are growing aggressively on B2B segment as well, and once the technical plant is operational, then again it is going to help in the B2B because their contribution of B2C is very less in the technical part. So, that's why the portion will not be that much as a whole. But, yeah, of course, it is going to increase and help in the margin. Because B2B is growing faster compared to B2C as once we have this new plant.
Got it, sir. And, sir, one last question, if I may squeeze in. So, when I actually look into the balance sheet, so what we have seen is that there has been an increase in the working capital, overall working capital, despite we have reduced the inventories and the receivables. However, there is a drastic decline in the payable days. So, any reason basically for that?
As you mentioned, you know, prices are going downward and now we are getting ourselves ready for the new seasons. And so we are procuring and we are getting a good cash discounts on the procurement side. So we try to procure maximum raw material at this lower prices at the very handsome rates. And so we are getting good discounts also. So we paid upfront here. And that's the reason our creditors are reduced substantially in this last quarter.
Got it, sir. Thank you. Thank you and all the best, sir.
Thank you. The next question is from the line of Satyan Vadhwa from Proficient Investment Advisors. Please go ahead.
Sorry, I joined a little late. Can you just shed some light on the new project in terms of when it will be ready and what is the revenue potential in the first year and total revenue potential of that project and what sort of margins do you expect out of it?
Yes, sir. New project away commissioning stage mein hai aur almost civil work 90% complete ho gaya hai. Aur 24th quarter mein, third quarter mein start ho jayega, production mein aa jayega. Aur already humne R&D aur production head to be hired kar liya hai. Aur process chalu hai. Aur first year hamara 10 to 15% ke aas aur ho jayega. Utilization.
10 to 15% utilization. And how long will it take to ramp up the full capacity?
2 years, sir.
2 years. And what is the total revenue potential, sir? And what is the sort of expected EBITDA margin?
Okay, once we reach the maximum capacity utilization, that is post 27, we are expecting an EBITDA margin of around 25%, 20% plus, sorry. Once it is fully utilized from this technical plant only.
And what will be the expected revenue or total top line from the project?
See, we mentioned this is a technical plant we will be also using for the captive consumption. So for outside sales, if we see, it will be around 450 plus crore. And once it is fully fully utilized.
And for internal use, how much?
Internal use, we will be almost using around 30% of the total production.
Right. So roughly about 200 crores or so.
Correct.
And how much will this add to the margin of the existing business?
As we are having currently, we are of course this Q4 was an exception. Normally, our margins are 11%. So once it is fully operational, it will be around 14%.
Okay. So margin of existing business will go to 14%, and new business will be at about 20% on full capacity. But roughly for, say, FY25, what would the margin of the new business be and what would be the quantum of the new business?
Sorry, can you please repeat?
Sir, this year, so you will just start the project, right? So it will be at 10-15% utilization. For next year, which is financial year FY25, what sort of revenue do you expect from the new project and what sort of margin in terms of rupees, like 150 crores or thereabouts? And what kind of margin should you expect at the capacity utilization that you achieve next year?
So as we are saying that around 15% capacity utilization will be there and our sales will start to stabilize by Q4 of the current financial. So we are expecting around 50 crore in the first year because sales will be mostly in the Q4. Q3 it will be getting stabilized. So for current year it will be around 50 crore. From this technical plant and the margin will be the slightly improved if we compare from the current year.
Right, but for next year, will you be at like 150 to 200 crores in sales, external sales in FY25?
FY25, yes, yeah.
150 crore.
Yes, around 150 crore.
200 crore sale, and what sort of margin would you be able to do? About 12-15% or better than that?
It will be around 13-14%.
13-14%. Okay. Okay. Great. All right. Thank you.
Thank you. The next question is from the line of Karan Dubey from Anubhuti Advisors LLP. Please go ahead.
Thank you for the opportunity. I think just final two questions from my end, rest have been answered. Sir, firstly, on the formulation plant, I think this year we have done roughly about 50% of the total capacity utilization levels. What are we targeting for FY24 and maybe for FY25 also, if you can guide on that?
So around
60 to 65% capacity we can utilize because of this is a seasonal business. That's why one machinery we have to install for single product, that it can also only one time season in 1 year for that machine. That's why in formulation industry, maximum 60 to 65% capacity we can utilize.
Okay, so at 60-65% utilization, we can assume that our margins can range in that 11 to 14% range, I think, for branded and industrial across the optimum margins which you have given in presentation.
Yeah.
Yes.
Understood. Perfect. I think that was from my end. Thank you, sir.
Thank you. The next question is from the line of Rahul Jain from Credence Wealth. Please go ahead.
Thanks for the opportunity. Sir, this is with regards to the technicals jo humne products ke naam diye hain presentation mein. I'm sorry, I have missed the initial commentary in case if you have shared about that. So most of these products, I think the prices have been down in last about 6 to 9 months to the extent of 20 to 40%. चाहे वो लामरा साइरोपिन हो या यू नो अल्फा मेथिलीन साइपरमेथिलीन है तो एंड द डिमांड इज एन इश्यू एंड देयर इज लॉट ऑफ डीस्टॉकिंग हैपनिंग सो एज वी स्पीक टुडे एट व्हाट स्टेज वी आर इन टर्म्स ऑफ द डीस्टॉकिंग एंड द प्राइस स्टेबलाइजेशन एंड कंसीडरिंग दैट चाइना इज ऑल्सो अ वेरी लार्ज प्रोड्यूसर इन मोस्ट ऑफ दिस प्रोडक्ट सो हाउ इज द बिहेवियर फ्रॉम देयर साइड
पहले तो ये जो सिंथेटिक पायरेथ्रोड है ना उसमें चाइना है ही नहीं चाइना का प्रोडक्ट नहीं है ये और ये जो सीजन है मैंने पहले बताया कि रबी सीजन थोड़ा वीक रहा उसकी वजह से ये सारा प्राइस डाउन इन्वेंटरी को लिक्विडेट करने के लिए सब यूज किया पड़े परमानेंटली नहीं है नेक्स्ट सीजन जैसे ऑनसेट ऑफ मानसून ऑल नॉर्मलाइज हो जाएगा और रूटीन बिजनेस में आ जाएगा क्योंकि ये टेम्पररी स्लंप था जो अब इंडस्ट्री धीरे धीरे उसमें से बाहर निकल रहा है परमानेंट नहीं है और चाइना बेस्ड प्रोडक्ट जो है उसमें भी सेम इश्यू है तो ये सिंथेटिक पायरेथ्रोड जनरली और मैक्सिमम 70% इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होता है और वर्ल्ड को सर्व करता है और चाइना में ओनली लैम्ब्डा एसिड वन ऐसा एक वन रॉ मटेरियल है जो यहाँ से इम्पोर्ट इंडिया में आता है और यहाँ उसको प्रोसेसिंग करके लैम्ब्डा साइलोथ्रिन बनता है बाकी सब इंडिजिनियस है और इंडिया में ही बनता है
सर आई अंडरस्टैंड कि ये दिस इज नॉट समथिंग विच विल लास्ट फॉर एवर बट गिवन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट एंड ऑन द ग्राउंड सिचुएशन आपको लग रहा है कि ये प्राइजेज एंड डी स्टॉकिंग सिचुएशन विल गेट ओवर सून एंड
बिल्कुल
हाँ हाँ अभी जो हेलो हैव द प्राइजेस समवेयर स्टेबलाइज नाउ और दे आर स्टिल गोइंग डाउन
Yeah, nowadays pricing day by day stabilized somewhat less. And up to the next quarter, it will be stabilized.
And sir, aapne ye jo figures diye with regards to the revenue from the technical plant in this current year, more so not of the current year, but next year. So, jab aap bol rahe hain ki next year kareeb 100 se 200 crore ka top line lenge, So, is that revenue figure at today's prices of the technical?
No, market price.
Market price. Aaj ke upar aap bol rahe hain ki 100 se 200 crore ka top line karenge?
Nahi, aaj ka market price to variable rahega na sir. Day to day changes rahega. To usi base pe raw material ka price bhi change hota rahega. प्राइस का कोई स्टेबिलिटी नहीं होता ना वो तो चेंजेस होता रहता है रॉ मटेरियल प्राइस में फिनिश गुड में या मार्केट में
एग्रीड सर इसीलिए मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे लास्ट 5-6 महीने में 20-25% प्राइसेस डाउन हो गए हैं जो 100 रुपए की चीज थी आज उसकी सेलिंग प्राइस 75 रुपए है ठीक है
वो जो हम बोल रहे हैं एवरेज है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट हम जाएंगे तो कहीं प्रोडक्ट में 10% डाउन है कहीं में 5% डाउन है कहीं में 30% डाउन है किसी में 40% डाउन है तो ये जो सिंथेटिक प्रोडक्ट है जो हम टेक्निकल बनाने जा रहे हैं उस प्रोडक्ट में ऑन एन एवरेज आप देखो तो 15-20% डाउन फॉल रहा होगा एवरेज कई प्रोडक्ट में सपोज आप देखो अल्फा साइपरमेथ्रिन में डाउन नहीं है परमेथ्रिन में नहीं है डेल्टा मेथ्रिन में इतना डाउन नहीं है मेजर डाउनफॉल हुआ है साइपरमेथ्रिन में हुआ है और लैमडा साइलोथ्रिन में हुआ है, बायफेंथ्रिन में हुआ है, जो कई प्रोडक्ट कई की रॉ मटेरियल्स है वो चाइना पे डिपेंड है। जैसे लैमडा साइलोथ्रिन बनाने के लिए मेन की रॉ मटेरियल लैमडा एसिड, तो लैमडा एसिड इंडिया में नहीं बनता है, तो चाइना से आता है, तो चाइना में उसका प्राइस काफी गिरा है, तो यहाँ नेचुरली वो डाउन होगा। पर उसकी कंपेरिजन आप अल्फा साइपरमेथ्रिन से करोगे तो उतना डाउन है ही नहीं, क्योंकि वो चाइना के ऊपर डिपेंड नहीं है।
अच्छा,
तो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेराइज करेगा, और आज की जो मार्केट प्राइस है उसी हिसाब से आप चलोगे तो ये जैसे हमने बताया ये करंट ईयर में हम 50-60 करोड़ का ये जो टेक्निकल प्लांट में से कमर्शियलाइज कर पाएंगे, और नेक्स्ट ईयर हम 150 करोड़ टू 150 टू 200 करोड़ का उसमें से एक्सपेक्ट कर।
ठीक है सर, श्योर, थैंक यू।
थैंक यू।
The next question is from the line of Yogesh Tiwari from Arihant Capital. Please go ahead.
Yeah, good afternoon, sir.
Good afternoon.
Sir, मेरा एक question था, जो हम लोग का नया plant है, तो उसमें total capex कितना था और हम लोग ने कितना spend कर दिया है already वो plant?
Total, our initial plan was around 173 crore for this project. और अभी now, because that was the estimate 1.5 to 2 years back, and now we have already increased up to 200 crores to be spent on this project, because if two reasons say, ek to usme our metal or cement ka price escalation hua hai in last 2 years, other thing is ki we are now initially whatever machines we have planned for, abhi now we are going for the some advanced machines which is going to give a better purity and better results, so usse thoda sa mera price overall hoga, but it will be around 200 crores. And we are going to meet those expenditure through our internal accruals as well.
So, ye, sir, ye plant jo aega, API ka, the plant which is coming up in Q3, the capex is about 200 crores. So, hum log ne abhi tak kitna spend kar diya isko par?
We have spent around 120 crores.
तो सर जो बैलेंस 80 करोड़ थी, इफ आई लुक एट द बैलेंस शीट, लाइक हम लोग के पास जो कैश कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है और लुकिंग एट द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, जो बैलेंस 80 करोड़ है वो हम लोग कैसे फंड करने का देख रहे हैं?
सी वी हैव इंटरनल अक्रूवल्स एंड ऑलरेडी दैट आईपीओ फंड्स आर ऑलरेडी पार्ट इन द एफडीज हियर, एंड सो वी आर गोइंग टू liquidate those FDs, and also we are going to meet a balance amount from internal accruals.
So sir, ye additional 80 crores jo hai, isme there won't be any external debt taken, ye sab ye internal accruals se fund ho jayega pura?
We have FDs in place as of now, it is not utilized, so what IPO funds we have FDs as on date. Of course, the major payments are going in this current quarter in April and May. We have made a lot of payments, but as on 31st March it was less. But today it is this much paid.
Well, sir, finally, are we looking to raise any long-term debt going forward?
No.
Okay. Thank you, sir.
Thank you.
Thank you. The next question is from the line of Rahil Shah from Crown Capital. Please go ahead.
हेलो सर, गुड आफ्टरनून।
गुड आफ्टरनून।
हाँ जी सर, मेरा क्वेश्चन थोड़ा नियर टर्म पे है कि आपने आपकी कमेंट्री में थोड़ा बोला था कि Q1 आपने बोला स्लो लग रहा है, ठीक है, बट देन यू सेड मूवमेंट इज एक्सपेक्टेड विद न्यू सीजन, बाइंग ऊपर जाएगा एंड थिंग्स विल नॉर्मलाइज बाय Q2, सो ये कितना तक मतलब देन व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट इन टर्म्स ऑफ लेट्स से मार्जिन, क्योंकि फिर देन यू सेड कि आपका स्पेंडिंग एएनपी पे वो सब पे भी Q4 में हाई होता है एंड वो भी हो गया, सो उसके रिजल्ट उसके उसका बेनिफिट्स भी आएगा, सो हम नियर टर्म में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्जिन्स में एंड रेवेन्यू में लेट्स से Q2 तक?
हाँ, इसमें आप देखो ना, अपनी जो एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री है उसमें Q2 एंड Q3 ये मेजर कंजम्पशन होता है एट ग्राउंड लेवल पे। Q1 है वो टोटली प्रिपेरेशन होता है Q2 के लिए मेजरली।
ओके,
Q1 पे कोई इतना कंजप्शन नहीं होता है, तो अब देखो अभी का प्रेजेंट सिचुएशन हम देखें तो काफी प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट नॉर्मलाइज होता जा रहा है, स्टेबिलिटी आ रहा है, तो उसी बेस पे अपने लेवल पे हमारा देखो तो लास्ट से तो बेटर ही रहेगा। इंडस्ट्री का थोड़ा नॉर्मलाइज होने में अभी एक Q1 का टाइम रहेगा, लेकिन Q2 से और सब नॉर्मलाइज हो जाएगा और जो रूटीन है इंडस्ट्री का मार्जिन वगैरह स्टेबिलिटी और सब सेट हो जाएगा, क्योंकि ये मेन कंजप्शन का पीरियड होता है, वहाँ कोई इतना प्राइस का गेम नहीं रहता फिर।
नहीं तो क्या होता है वो मार्जिन, लाइक व्हाट कैन इट गो बैक टू जो नॉर्मलाइज इंडस्ट्री का आपने बताया EBITDA मार्जिन?
EBITDA मार्जिन जो है और 20% अराउंड रहता है, 11 to 12% के अराउंड रहता है जो इंडस्ट्री मार्जिन है।
क्वार्टर के लिए
वी आर ऑलरेडी सीइंग इम्प्रूवमेंट कम्पेयर टू लास्ट क्वार्टर एंड एज वी मेंशन दैट आवर मार्जिन वर लोअर बिकॉज ऑफ एक्सपेंस, बट नाउ EBITDA मार्जिन विल नॉर्मलाइज इन कमिंग क्वार्टर एंड वी आर ऑलरेडी सीइंग इम्प्रूवमेंट कम्पेयर टू लास्ट ईयर।
सो प्रीवियस लेट्स से क्वार्टर थ्री के लेवल तक जा सकता है वापस, क्वार्टर थ्री FY23
क्वार्टर थ्री के लेवल एज आई मेंशन इनिशियली आई थिंक इन माय अर्लियर आंसर, सी क्वार्टर थ्री व्हेन वॉल्यूम्स वर लेस वी फोकस मोर ऑन द हाई मार्जिन प्रोडक्ट,
हाई मार्जिन यस यस,
बट वी आर ब्लेंडेड बिकॉज आवर मार्केट इज पिकिंग अप, सो आवर इंस्टीट्यूशनल सेल्स एज वेल एज द ब्रांड सेल्स बोथ विल कॉन्ट्रीब्यूट एंड सो मार्जिन विल नॉट बी एज
Q4 higher margins, but it will be normal margins as per the industry. Okay, and अगर पूरा let's now focus on if we focus on FY24, correct? Overall levels पे उसका हम revenue जाने भी दे, so the way you've been growing, आप जो 35-40% के बीच में CAGR basis पे annually grow कर रहे हो वो continue होता रहेगा, you expect?
Definitely.
Yeah, right. Okay then. Thank you very much. All the best.
Thank you. The next question is from the line of Dhvanil Desai from Total Capital. Please go ahead.
Sir, एक question is on the new plant जो technical हम बनाए गए वहाँ पे, तो उसका major focus market export रहेगा और you know we will plan to sell that in Indian market because रीजन आई एम आस्किंग इज की पायरेथोन में लास्ट कपल ऑफ इयर्स में देयर इज यू नो लॉट ऑफ कैपेसिटी विच हैज कम आउट, तो मतलब हमको मार्केट कैसे हाउ विल वी कैप्चर द मार्केट उस पर थोड़ा इफ यू कैन
मैं पूरा आपको सिंथेटिक पायरेथोन का बताऊं तो मेजरली एक्सपोर्ट होता है। सपोज इंडिया में जितना कंजप्शन हो रहा है उसमें 70% एक्सपोर्ट है और पूरा वर्ल्ड को ये इंडिया ही ये सिंथेटिक पायरेथ्रोड का एक्सपोर्ट होता है पूरे वर्ल्ड में, तो अपना भी मेजर फोकस एक्सपोर्ट में रहेगा और पैरेलली हमारा डोमेस्टिक और जो अपना ब्रांड है उसमें भी कैप्टिव कंजप्शन भी रहेगा, और थर्ड पोर्शन हमने जो ये हाउसहोल्ड इंसेक्टिसाइड है जो पब्लिक हेल्थ में यूज होता है वो भी डिविजन स्टार्ट किया अपना ब्रांडेड में, तो उसमें भी कहीं उसमें कंज्यूम होगा और उसमें सिंथेटिक पायरेथ्रोड ही रहता है, तो उसी करके हम कोई एक सेगमेंट पे डिपेंड नहीं है, तो पैरेलली हमारा एक्सपोर्ट अपना ब्रांड बिजनेस में और B2B में और ये जो पब्लिक हेल्थ का डिवीजन हम शुरू किया है उसमें, तो हर जगह पे उसका कंजम्पशन रहेगा, पर मेजरली आप जो बोल रहे हैं वो रहेगा लार्ज वॉल्यूम तो एक्सपोर्ट में रहता है, वॉल्यूम कम रहता है लेकिन मार्जिन ज्यादा रहता है।
बराबर वही ट्रेंड सर हमने बाकी सब जगह पे भी देखा है, तो सर एक्सपोर्ट में कौन से मार्केट हम टारगेट कर रहे हैं और इन टर्म्स ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वेयर आर वी यू नो इन टर्म्स ऑफ द टारगेटेड मार्केट?
जो एक्सपोर्ट में जैसे हमने डे वन से स्टार्ट किया है, प्रेजेंटली लास्ट ईयर भी हमारा एक्सपोर्ट अच्छा ही रहा, तो कई कंट्री में जैसे अभी हमारा जो है मेनली एक्सपोर्ट ये एशिया स्पेसिफिक मिडल ईस्ट एंड अफ्रीकन कंट्रीज में है, और बैक मतलब एक साल पहले से ही हमने ये जो यूरोपियन ब्राजील एंड यूएस है उसमें जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, अभी डाटा जनरेटिंग एट एंड स्टेज पे है, तो नेक्स्ट एक दो महीने में वहाँ सब एप्लीकेशन जो रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा ब्राजील यूएसए एंड यूरोप में, तो आने वाले 6 महीने में 1 साल में 2 साल में जो कंट्री का जो पॉलिसीज है उसी हिसाब से हमारा रजिस्ट्रेशन आना चालू हो जाएगा, तो वहाँ उस कंट्री को हम मेजर टारगेट रखेंगे क्योंकि वहाँ मार्जिन अच्छा मिलेगा रजिस्ट्रेशन प्रोडक्ट है इसलिए। बाकी जहाँ रजिस्ट्रेशन इजी है वहाँ हमने ऑलरेडी कई कंट्रीज में हमारा रजिस्ट्रेशन ले भी रखा है और एक्सपोर्ट हमने हमारा फॉर्मुलेशन एक्सपोर्ट चल भी रहा है और वहाँ टेक्निकल जहाँ एक्सपोर्ट का स्कोप है वहाँ हम इजिली वहाँ स्टार्ट भी कर देंगे तुरंत। तो उस तरीके का पूरा वर्ल्ड का जो कंट्री टू कंट्री उसकी पॉलिसी है उस बेस पे हम काम कर रहे हैं। जैसे एशिया स्पेसिफिक है वहाँ मेजर फॉर्मुलेशन चलता है लेकिन उसमें कॉम्बिनेशन में सिंथेटिक पायरेथ्रोड यूज होता है, मेजरली साइपरमेसिन एंड लैम्ब्रासाइलोसिन यूज होता है तो वो अपना कैप्टिव कंजप्शन में यूज हो जाएगा। तो उस तरीके के कॉम्बो मार्केट रहेगा पूरा।
ओके, और सर हम वी आर सेइंग कि हम 35-40% ग्रो कर सकते हैं यू नो फ्रॉम द बेस, और इवन आई एम अज्यूम कि 25% ग्रो करेंगे, 3 साल में डबल होगा हमारा फॉर्मुलेशन पैकेज। तो उसके लिए डू वी नीड टू पुट अप एनी एक्स्ट्रा कैपेसिटी ऑन द फॉर्मुलेशन साइड और वी हैव इनफ कि वी विल बी एबल टू कैटर टू नेक्स्ट 2-3 इयर्स ऑफ ग्रोथ?
ना, अपने पास फॉर्मुलेशन का फुल कैपेसिटी है, उसका हम आने वाले 2 या 3 साल तक हमें यूटिलाइजेशन करेंगे तो कोई एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, और पड़ेगी तो भी एकदम नेग्लिजिबल रहता है, फॉर्मुलेशन में उतना इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता नहीं रहती है। और जो ग्रो होने का हमारा जो पाथ है वो हमने 3-वे मॉडल प्लान किया है। एक तो हमारा ब्रांड बिजनेस है वो हम ग्रो कर रहे हैं, और सेकंड जो B2B बिजनेस है उसमें डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनली दोनों ग्रो हो रहा है, और पब्लिक हेल्थ डिवीजन वाला है उसमें ग्रोथ आएगा। तो उस बेस पे हमारा जो CAGR ग्रोथ है सेल्स रेवेन्यू का वो आता रहेगा, और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पूरा आने वाले 2 या 3 साल में होगा, और माइनर जरूरत पड़ेगी तो कोई खास उसमें बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं रहता फॉर्मुलेशन।
ओके,
नया प्रोडक्ट आता है कुछ उसकी केमिस्ट्री या फॉर्मुलेशन अलग है तो जरूरत पड़ती है, बाकी हमारे पास पूरा फैसिलिटी और कैपेसिटी है फॉर्मुलेशन का जो रनिंग प्रोडक्ट है उसके लिए।
एंड वन क्वेश्चन ऑन बैलेंस शीट साइड, तो कैन यू थ्रो सम लाइट ऑन द ट्रेड टर्म एंड द इन्वेंटरी रिक्वायरमेंट बोथ फॉर B2C एंड B2B? मतलब दोनों B2C साइड पे हमारा क्या ट्रेड टर्म्स रहता है इन टर्म्स ऑफ यू नो रिसीवेबल डेज और इन्वेंटरी, यू नो हाउ मेनी डेज ऑफ इन्वेंटरी वी नीड टू कीप, और B2B साइड पे द सेम थिंग इफ यू कैन थ्रो।
इस पर इंडस्ट्रियल मार्केट जो ब्रांड बिजनेस है अपना B2C उसमें 90-120 डेज क्रेडिट की रहता है, और इन्वेंट्री डेज है ऑन एन अराउंड अपने पास 30-45 डेज इन्वेंट्री का पीरियड रहता है।
और B2B में?
B2B में इन्वेंट्री डेज बहुत लेस होता है, 15-30 डेज, और क्रेडिट पीरियड सेम रहता है 90-120 डेज।
ओके, गॉट इट, थैंक यू।
Thank you. Participants, if you wish to ask questions, please enter *1. The next question is from the line of Ashraf Patel from Molecule Ventures. Please go ahead.
Sir, existing jo formulations ka capacity hai around 25,000 metric ton. Usme se aap jab tak hamara backward integration wala plan online nahi hota hai, usme se aap kitna maximum sir revenue kar sakte ho?
Around 30-40% na?
30-40% रेवेन्यू टोटल जो है वो 1000 करोड़ के आसपास, 1100 करोड़ हम लोग फॉर्मुलेशन प्लान से कर सकते हैं।
एग्जिस्टिंग फॉर्मुलेशन प्लान से?
हाँ, एग्जिस्टिंग फॉर्मुलेशन
प्लान। और उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट नहीं लगेंगे कुछ भी?
ना, उसमें माइनर चेंज लगता है फॉर्मुलेशन प्लांट्स में जो है वो कैपेक्स इतना कुछ सपोज मॉडिफिकेशन है कि कुछ है ऐसा है तो माइनर कैपेक्स लगता है, कोई मेजर कैपेक्स नहीं है।
समझ गया, ओके। और सर जो एग्रेसिवली B2C ब्रांडेड बिजनेस में जो आपने एडवर्टाइजमेंट्स में और वो सब में स्पेंड किए हैं, तो फ्यू इयर्स डाउन द लाइन, 3-5 इयर्स डाउन द लाइन, कैन वी एक्सपेक्ट फॉर्मुलेशन मिक्स टू बी इक्वली डिवाइडेड बिटवीन B2B एंड B2C? या ये ऐसा ही रहेगा कि 75-72% अराउंड B2B ही रहेगा?
30-35 B2C रहेगा और 70-65 जो है वो B2B रहेगा, क्योंकि दोनों में पैरेलल ग्रोथ होगा। जैसे टेक्निकल प्लांट आएगा तो हमारा B2B में भी ग्रोथ दिखेगा। दूसरा चीज, B2C में ग्रोथ जो हम लोगों ने लास्ट 6 स्टेट एक साथ ओपन किए हैं, ग्रोथ वहां से आना शुरू होगा, तो पैरेलली इंक्रीज होगा दो।
ओके और सर आप स्टेट वाइज मिक्स दे सकते हो, जैसा कि आपने बोला 17% ऑफ टॉप लाइन इज कमिंग फ्रॉम 15 प्रोडक्ट्स, वैसे आप स्टेट वाइज बोल सकते हो टॉप थ्री टॉप फाइव स्टेट्स कौन से होंगे और कितना रिवेन्यू का प्रपोजिशन आता है उसमें से?
B2C में परसेंटेज वाइज अगर मैं बोलूं तो 40% के आसपास गुजरात आता है,
40%
ट्वेल्व परसेंट के आसपास राजस्थान है, 15% के आसपास MP है,
ओके
फिर महाराष्ट्र हम लोगों ने नया 10 शुरू किया है तो वहां पे है 7% लास्ट ईयर का, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ बिहार वो माइनर स्टेट है मतलब वहां पे 5-7% आता,
ओके ओके। और सर कमिंग बैक टू द एक्टिव इंग्रेडिएंट्स वाला केपेक्स, बेसिकली सर हमने बहुत बार ऐसा सिचुएशन देखा है वेर इन बैकवर्ड इंटीग्रेशन मेक्स लॉजिकल सेंस कि मार्जिन प्रोफाइल बढ़ेगी, स्टेबिलिटी आएगी, RM का सोर्सिंग बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, बट मेनी अ टाइम सर कंपनी जब कॉमोडिटी प्लेयर्स में कॉमोडिटी प्रोडक्ट में बैकवर्ड इंटीग्रेट करती है तो वहां पे बहुत सारे इश्यूज होते हैं कि मार्केट कभी इतना फेवरेबल नहीं हुआ तो दे वोंट बी एबल टू सेल इट, तो आपको ये सब थॉट्स नहीं आए थे बिफोर डूइंग द एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, या तो फिर पुटिंग इट अदर वे अराउंड आपके क्या थॉट प्रोसेस था, कॉन्फिडेंस कैसे आया आपको कि आप रैंप अप कर सकोगे ये?
सर इसमें अगर देखेंगे, हाँ सर
इसमें मेजर देखो तो हमारा हमने जो एक गोल बनाया विजन बनाया वी इसको 2000 करोड़ की कंपनी करना है तो ओनली फॉर्मुलेशन से तो हो नहीं पाएगा ये, तो एक्टिव इंग्रेडिएंट का प्लास हमने सुना और उसमें भी सिंथेटिक पायरेथ्रोड क्यों सुना, क्योंकि सिंथेटिक पायरेथ्रोड है वो ओनली एग्रीकल्चर बेस्ड नहीं है, एग्रीकल्चर में भी जाता है, हाउस होल्ड में भी जाता है, ये वेटनरी में भी जाता है और ऑल ओवर वर्ल्ड में उसका मार्केट है और वो इंडिया से ही एक्सपोर्ट होता है क्योंकि इंडिया की वो केमिस्ट्री में उसकी मास्टरी है, तो ये प्रोडक्ट ऐसा नहीं है कि एक सीजन आउट है कि भाई अभी चलेगा फिर नहीं चलेगा, ये आपको हिस्ट्री देखो तो सालों से ये प्रोडक्ट चलता रहा, नया नया प्रोडक्ट इसमें ऐड भी होता रहा और अभी जो फैशन चला है कॉम्बिनेशन का तो ऑर्गेनोफॉस्फोरस ग्रुप के साथ सिंथेटिक पायरेथ्रोड का कॉम्बिनेशन भी अच्छा प्रोडक्ट का डिमांड है और वो मूवमेंट भी अच्छा चल रहा है, जैसे आपने आप अगर देखो टेक्निकली तो प्रोफेनोप्लस साइपर है, इथियोन प्लस साइपर है, क्लोरोप्लस साइपर है, तो उस तरीके की प्रोडक्ट है और थायो प्लस लेमड़ा है, तो ये प्रोडक्ट ऑन गोइंग है और डिमांडिंग प्रोडक्ट है और एक्सपोर्ट भी अच्छा है, तो उस तरीके का ये जो सिंथेटिक पैरेथोड है वो कॉम्बिनेशन में अलग अलग सेक्टर में चलता रहता है, तो इसीलिए हमें एक सेक्टर पे एग्रीकल्चर पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता तो दूसरा सेक्टर भी चलता है, और सेकेंड थिंग ये उसके लिए हमने प्लान बी भी रेडी रखा है कि भाई ये जो हम प्लांट डाल रहे हैं वो टोटली मल्टीपल प्लांट है, ऐसा नहीं है कि एक सिंगल प्रोडक्ट ही बनेगा वहाँ कि भाई सिंथेटिक पायरेथ्रोड को इसके अलावा कुछ नहीं बना पाएंगे, तो उसमें हमने अभी से ही प्रोविजन ऐसा रख रहे हैं कि भाई ये प्रोडक्ट की जरूरत है हमारा, जैसे कैप्टिव कंजम्पशन में हमने अभी से सोच रखा है कि थायोमेथोग्राम है तो हम 200 टन हमें कैप्टिव के लिए चाहिए, तो ये प्लांट जैसे चालू होगा तो उसमें हम थायोमेथोग्राम भी बना सकते हैं और प्रोफेनोफोस क्लोरोपाइरिफोस जो ऑर्गेनोफॉस्फोरस का ग्रुप है वो भी उसमें माइनर चेंज करके बना सकते हैं, तो ये एक प्रोडक्ट पे डिपेंडेंसी नहीं है और आज की डेट में एक सेक्टर या एक प्रोडक्ट पे डिपेंड रहकर इतना इन्वेस्टमेंट करना वो फुलिस डिसीजन है, तो वो मल्टीपल प्रोजेक्ट है, मल्टीपल प्लांट है और मल्टीपल प्रोडक्ट के लिए हम कर सकते हैं, तो वो उस तरीके की स्ट्रेटेजी हमने अभी से हमारा थॉट प्रोसेस है और फ्यूचर के लिए भी कोई नई केमिस्ट्री आता है तो ये केमिकल प्लांट है एक देखो तो कोई भी केमिकल प्लांट में या आप कितने टेम्परेचर तक उसको ले जा सकते हैं हाई पे और कितना कूलिंग कर सकते हैं उसके ऊपर उसका रिएक्शन का चेंज डिपेंड रहता है, तो पूरा फैसिलिटी हमने डेवलप कर रखा है और नया केमिस्ट्री कोई भी आता है तो हम उसको चैलेंज में बना सकते हैं, उसका हमारे पास R&D भी है और प्रोडक्शन टीम भी है, और दूसरा मैटर थिंग एक हम अभी इंटरनेशनल जैसे जापानीज कंपनी काफी इंडिया में एंटरिंग हो रही है तो हमारा ऑन डिस्कशन ऑन गोइंग है उन कंपनियों के साथ भी, कोई नई प्रोडक्ट या नई केमिस्ट्री लेके आते हैं तो हम टेक्नोलॉजिकल पार्टनर बनाने के लिए भी हमारा रेडी है, तो उस तरीके की स्ट्रेटेजी हम चला रहे हैं इंटरनेशनली डोमेस्टिक और प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, तो ये कोई वन टाइम या वन प्रोडक्ट या वन सेक्टर के लिए प्लांट नहीं है, ये मल्टीपल है, मल्टीपल यूजेज के लिए है।
ओके तो सर आपने जो जो भी प्रोडक्ट प्रोफाइल्स मेंशन की है बैकवर्ड इंटीग्रेशन में, उसके लिए सारा R&D इज ऑलरेडी इन प्लेस, आपने हायरिंग्स और वो सब ऑलरेडी कर ली है?
यस पूरा टीम अपने पास रेडी है और वो भी रहा है।
ओके और सर जो आप प्रेजेंटेशन में मेंशन कर रहे हो कि वी आर टारगेटिंग क्लोज टू 20% मार्जिन एक्टिव इंग्रेडिएंट्स में, सो विद इन दैट आर दिस मार्जिन एक्सपेक्टेशन बेस्ड ऑन करंट डिमांड सिनेरियो या हिस्टोरिकली भी इतनी मार्जिन बनती है ये सेगमेंट में?
आप हिस्टोरिकली एवरेज दे सकते हो, ये कभी कभी यार कोई भी बिजनेस देखो, कोई भी प्रोडक्ट देखो या कोई भी अपना प्रोडक्ट देखो तो उसमें स्टेबिलिटी नहीं रहेगा ना, वो तो चेंज होता रहेगा मार्केट के हिसाब से। एवरेज ऑफ लास्ट 5 ईयर का देखो तो उस तरीके से हम लेके चल रहे हैं, क्योंकि बिजनेस में कभी अपॉर्चुनिटीज भी अच्छा मिलता है, कभी इस तरीके का डिक्लाइन भी रहता है, तो उस वो मैनेज करना पड़ता टाइमिंग है।
ओके डन सर, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड सर, ऑल द बेस्ट टू
यू। थैंक यू सो मच।
Participants, if you have any questions, please enter star and one. As there are no further questions from the participants, I now hand the conference over to Mr. Sayam Pokharna for closing comments.
Thanks a lot, everyone, for joining the call. If there are any further queries or if you want to reach out to us for any further interactions, please feel free to do so. Our email address has been given at the back of the investor presentation. Look forward to speaking to you next time. Thank you.
On behalf of that, we conclude this conference. Thank you for joining us, and you may now disconnect your lines.